नमस्कार भारत, तारीख 15 फरवरी दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम 17 की मौत, कई घायल। आरोपों में घिरे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने दिया इस्तीफा।
The ANC should never be divided in my name. I have therefore come to the decision to resign with immediate effect.
और चुनावी रैली के लिए आज अगरतला में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। राम माधव से जानेंगे बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है त्रिपुरा चुनाव।
बहुत बड़ी टक्कर है, इनफैक्ट मैंने इसको बैटल रॉयल कहता हूं।
बात ईरान के राष्ट्रपति के भारत दौरे की भी होगी, समाचार पत्रों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार शाम टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में इस्तीफे का ऐलान किया। इससे पहले जुमा की पार्टी ANC ने उन्हें पद छोड़ने या फिर गुरुवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को कहा था। 75 वर्षीय जुमा पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। साल 2009 से सत्ता में रहे जुमा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति सिरिल रामापोसा के लिए जगह खाली करने को कहा जा रहा था, जिन्हें ANC का नया नेता चुना गया है। इस्तीफे के ऐलान से पहले अपने लंबे भाषण में उन्होंने कहा कि जिस तरह से ANC ने उनके साथ बर्ताव किया वो उन्हें ठीक नहीं लगा। अमरीकी प्रांत फ्लोरिडा के पार्कलैंड में एक हाई स्कूल में गोलीबारी हुई जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूल की इमारत को घेर लिया। टीवी पर प्रसारित तस्वीरों में कई घायलों को एम्बुलेंस मिले जाता दिखाया गया है। अमरीकी मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका जाहिर की गई है। एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। ब्रॉवर्ड काउंटी के शेरिफ के ऑफिस ने जानकारी दी है कि वो स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल की घटना पर नजर बनाए हैं। शेरिफ ऑफिस के मुताबिक उन्हें रिपोर्ट मिली है कि कुछ लोग हताहत हुए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो इस इलाके में आने से बचें। FBI का कहना है कि वो मौके पर स्थानीय प्रशासन की मदद में जुटी है। अमरीकी टीवी चैनलों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता बड़ी संख्या में पुलिस परिसर के बाहर जमा हो गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लिंडसे वॉल्टर्स ने बताया, राष्ट्रपति को फ्लोरिडा के स्कूल में हुई गोलीबारी की जानकारी दे दी गई है। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। फ्रांस की अदालत ने नवंबर 2015 में हुए पेरिस हमले के पहले ट्रायल में एक मुख्य संदिग्ध को बरी कर दिया है। इस हमले में 130 लोगों की मौत हो गई थी। संदिग्ध जवद बंदाउद पर आरोप था कि उन्होंने दो हमलावरों को अपना घर किराए पर देकर उनकी मदद की थी। अदालत के फैसले के मुताबिक जवद बंदाउद को उस वक्त यह नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। जवद के अलावा अन्य दो लोग भी हमलावरों को छुपाने के जुर्म में अभियुक्त बनाए गए थे, जो फिलहाल जेल में 5 साल की सजा काट रहे हैं। इस मामले में सिविल वकील दिदियर सिबेन ने कहा,
Voilà donc un avis à la fois partagé entre une décision juste concernant les deux premiers prévenus et une décision.
फैसले को लेकर मिश्रित भावनाएं हैं, क्योंकि एक तरफ तो पहले दो संदिग्धों को लेकर न्यायपूर्ण फैसला हुआ और एक तरफ उस व्यक्ति जवद वाला फैसला जिसने हमलावरों को रहने की जगह दी। वो ऐसा लगता है कि अगर आप सर्कल का हिस्सा हैं तो आप बच निकल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। वकील दिदियर सिबेन के शब्द। अमेरिका के मैरीलैंड में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मुख्यालय के बाहर बुधवार को एक कार टकराने से 3 लोग घायल हो गए। इस मामले में 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक एक काले रंग की SUV बिना अनुमति के वहां पहुंची थी। इसके बाद वहां गोलियों की आवाज सुनाई दी। FBI के स्पेशल एजेंट गॉर्डन जॉनसन ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। FBI के मुताबिक कार के ड्राइवर, एक आम व्यक्ति और NSA के एक पुलिस अधिकारी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायल ड्राइवर की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है, जबकि बाकी दोनों घायल खतरे से बाहर बताए गए हैं। एजेंट जॉनसन ने मीडिया को बताया,
At approximately 0655, a vehicle made unauthorized access.
सुबह के करीब 6:55 पर एक कार बिना अनुमति के NSA के परिसर में घुसी और ये देखकर NSA पुलिस ने भी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की। हमें नहीं लगता कि आतंकवाद से जुड़ा मामला है। FBI एजेंट जॉनसन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जिम्बाब्वे के मुख्य विपक्षी नेता मॉर्गन स्वेनगिराई का निधन हो गया है। 65 वर्ष के मॉर्गन कैंसर से जूझ रहे थे। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आधी रात के बाद दक्षिण अफ्रीका से लेकर अमरीका तक दुनिया में कई जगह घटनाक्रम तेजी से बदले। दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे जैकब जुमा ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। हम जुमा की बात करेंगे, लेकिन पहले बात अमेरिका की, जहां फ्लोरिडा प्रांत में पार्कलैंड शहर के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। गोलियां चलाने वाले शख्स की पहचान 19 बरस के निकोलस क्रूज के तौर पर की गई है। निकोलस इसी स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सलीम रिजवी।
फ्लोरिडा के पार्कलैंड शहर के मरियोरी स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल की एक इमारत में पुलिस के मुताबिक हमलावर ने दूर तक मार करने वाली AR-15 राइफल से गोलियां चलाईं। ब्रावर्ड काउंटी के शेरिफ स्कॉट इसराइल ने हमले के बारे में पत्रकारों को बताया।
We have 17 confirmed victims. 12 victims were within the building.
शेरिफ कह रहे थे कि अब तक कुल 17 लोग गोलीबारी में मारे गए हैं, जिनमें से 12 इमारत के अंदर मारे गए, 2 इमारत के बाहर और 1 सड़क के दूसरी तरफ मृत पाया गया और 2 जख्मी लोग अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि हमलावर इसी स्कूल का 19 साल का पूर्व छात्र है, जिसका नाम निकोलस क्रूज है। क्रूज को स्कूल से निकाल दिया गया था। पुलिस का कहना है कि बंदूकधारी के पास ऑटोमेटिक राइफल की कई मैगजीन मौजूद थी। हमला करने से पहले हमलावर ने स्कूल में फायर अलार्म बजाया, जिसे लेकर अफरा तफरी मच गई थी और उसके बाद उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी के समय एक छात्रा इजाबेला गोमेज भी स्कूल में मौजूद थी और वो किसी तरह बच के निकल आई थी। स्कूल की छात्रा इजाबेला गोमेज कह रही थी, सब लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, मुझे लगा कि बंदूकधारी मेरे पीछे ही है और मुझे दबोच लेगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बस भागने लगी। पुलिस ने बंदूकधारी को इमारत के बाहर थोड़ी दूर पर गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि वो अन्य छात्रों के साथ स्कूल से बाहर भाग गया था, लेकिन पुलिस ने कई घंटों तक स्कूल की इमारत की छानबीन जारी रखी। इस स्कूल में 3,000 के करीब छात्र पढ़ाई करते हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर निकोलस क्रूज के कंप्यूटर और सोशल मीडिया के अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं और पुलिस के साथ अमरीका की संघीय जाँच संस्था FBI भी इस मामले में जाँच कर रही है। अमरीका में गोलीबारी के मामले अक्सर होते रहते हैं। पिछले साल कुल 65 गोलीबारी के मामले घटित हुए थे और इस साल अब तक 18 गोलीबारी के मामले हो चुके हैं। इससे पहले भी कई बार स्कूलों में गोलीबारी के मामले हो चुके हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी मारे जा चुके हैं। लेकिन आमतौर पर अमरीकियों द्वारा बंदूक रखने के कानूनी अधिकार को लेकर अमरीका में लंबे अरसे से बहस होती रही है और अब एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है कि क्या अब समय आ गया है कि बंदूकें रखने के अधिकार में कटौती की जाए। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी जो वाशिंगटन में हैं, वो लगातार इस खबर पर नजर रख रही हैं और वो फिलहाल फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इरम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल स्कूल गोलीबारी के मामले में और क्या कुछ जानकारी सामने आई है।
जी, इस वक्त जो है, अगर आप अमेरिका में ट्विटर पे जाएं तो जो सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग जो ट्रेंड है वो फ्लोरिडा शूटिंग के बारे में है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि वो दुआएं देते हैं और कंडोलेंसेस देते हैं उन फैमिलीज को जिनके बच्चे जो है इस हमले में मारे गए हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कुछ अमरीका में इस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी स्कूल जाते हुए, अमेरिकन स्कूल जाते हुए अनसेफ, अपने आप को गैर महफूज ना महसूस करें। मेलानिया ट्रंप जो उनकी बीवी हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ US, उन्होंने भी यही कहा है कि उनका हार्ट जो है, उनका दिल जो है, वो इस वक्त बहुत भर आया है और वो दुआ कर रही हैं उन फैमिलीज के लिए जो कि इसमें इस शूटिंग का।
जी इरम, राष्ट्रपति हैं, वो दुआ कर रहे हैं, सांत्वना संवेदना जता रहे हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2013 से अगर बात की जाए, सलीम रिजवी पिछले साल के आंकड़े दे रहे थे, 2013 से अगर हम बात करें तो 291 इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। यानी हर हफ्ते औसतन एक ऐसी घटना होती है। अमरीकी प्रशासन केवल दुआ प्रार्थना कर रहा है या आगे भी कुछ हो रहा है कि वाकई लोग स्कूल जाते हुए ना डरें, बच्चे ना डरें?
जी बिल्कुल, हमारे लिसनर्स को यही पता होना चाहिए कि सिर्फ इस साल में, जिसके हम फरवरी में हैं, एक साल में 2 महीने के अंदर 18 शूटिंग्स के वाकयात सामने आ चुके हैं। और अमेरिका में जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि गन वायलेंस जो है उस किस तरह से कंट्रोल किया जाए. प्रेसिडेंट ट्रंप खुद अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी और अब भी पावर में आने के बाद भी वही कहते रहे हैं कि गन वायलेंस जो है वो मसला नहीं है, इंतहा पसंदी टेररिज्म जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा मसला है. डेमोक्रेट्स ये कहते रहे हैं और ये सपोर्ट भी करते रहे हैं किसी हद तक कि किसी तरह से गन वायलेंस को या गन कंट्रोल जो है उसको कानून की शक्ल दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनसे वो गन्स को ना अवेल कर सकें ताकि इस तरह के वाकयात ना हो. इस पूरे वाक्य के बाद एक मरतबा फिर अमरीका में वो बहस शुरू हो गई है, डिबेट शुरू हो गई है कि किस तरह से जो सबसे बड़ा खतरा अमरीकियों को लाहक है वो है गन्स के थ्रू, उसको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से इस तरह की कानून साजी की जाए, इस तरह के कानून लाए जाए कि ये वाकयात जो स्कूल शूटिंग के होते रहे हैं उसको रोका जा सके.
जी बहस तो बहुत हो रही है लेकिन फिलहाल नतीजे सामने आते नहीं दिखाई दे रहे हैं. शुक्रिया इरम इस पूरी जानकारी के लिए. अगली खबर दक्षिण अफ्रीका से. राष्ट्रपति पद छोड़ने से लगातार इनकार करते रहे जैकब जुमा ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया. उन्होंने कल देश के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया. साल 2009 से देश की अगुवाई करने वाले जुमा भ्रष्टाचार के कई आरोपों में घिरे हैं. पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं सर्वप्रिया सांगवान.
जैकब जुमा पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था. साल 2009 से सत्ता में रहे जुमा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं. उन पर 18 मुकदमे हैं जिनमें से एक 1990 में हथियारों की खरीद फरोख्त से संबंधित है. जुमा की पार्टी ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्हें उपराष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के लिए जगह खाली करने को कह रही थी. इस्तीफे के ऐलान के पहले जुमा ने लंबा भाषण दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से ANC ने उनके साथ बर्ताव किया वो उन्हें ठीक नहीं लगा.
No life should be lost in my name and also the ANC should never be divided in my name.
मेरे नाम पर किसी की जान नहीं जानी चाहिए और मेरे नाम पर ANC में कभी विभाजन नहीं होना चाहिए. इसलिए मैंने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति पद छोड़ने का फैसला किया. मैं अपने संगठन के नेतृत्व के फैसले से असहमत हूं. मैं ANC का अनुशासित सदस्य हूं. पद छोड़ने के बाद भी मैं दक्षिण अफ्रीका के लोगों और ANC की सेवा करता रहूंगा. ये थे जैकब जुमा के शब्द. इससे पहले पार्टी ने साफ किया था कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा. अब उनके इस्तीफे के बाद पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जुमा के इस्तीफा देने से दक्षिण अफ्रीका के लोग निश्चिंत होंगे. हालांकि जुमा ने कहा कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का कोई भय नहीं है. रंगभेद के दौर में जुमा ANC की मिलिट्री विंग के सदस्य बने थे. वो दौर खत्म होने के बाद करीब एक तिहाई समय तक उन्होंने देश की अगुवाई की. उन्होंने एक ऐसे वक्त में अपना पद छोड़ा है जब वो कई आरोपों में घिरे हैं और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में है.
फिलहाल लगता है यही है कि दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक युग का पटाक्षेप हो गया. रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान.
सनसनी नहीं विश्वसनीयता का दम
BBC हिंदी.
रुख भारत का करते हैं. ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी आज भारत आ रहे हैं. उन्हें भारत दौरे का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है. रूहानी के दौरे के भारत के लिए क्या मायने हैं हमारे साथी संदीप सोनी ने वरिष्ठ पत्रकार सीमा मुस्तफा से यही सवाल किया.
इस विजिट में मुझे लग रहा है कि एक तरफ इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चाबहार पोर्ट है, $500 मिलियन अग्रीमेंट है, ऑयल की जो डीलिंग है इंडिया और ईरान, और जरूरत भी है इंडिया को ऑयल की तो उसको आगे बढ़ाने की बात है. ईरान इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है. एक झगड़ा भी है फरजाद गैस फील्ड्स का, उस पर बातचीत मुकम्मल तौर से नहीं हुई है बल्कि काफी कॉन्फ्रंटेशन है. तो एक तरफ तो इकोनॉमिक है और एक तरफ लिंक्ड भी है और नहीं भी लिंक्ड है स्ट्रेटेजिक से. और वहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि अभी इंडिया और ईरान पहले अफगानिस्तान पे कोऑपरेट कर रहे थे, साथ साथ इंडिया का जो रवैया रहा है पैलेस्टाइन और इसराइल के इशू पर वो काफी मुख्तलिफ रहा है ईरान से. फिर इंडिया की रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया से वैसे ही है जैसे अमेरिका की है. तो ये बहुत ही क्वेश्चन मार्क्स हैं. अभी तो नहीं लग रहा है कि ये विजिट से कोई रियल स्ट्रेटेजिक इशू रिजॉल्व होगा.
किसको किसकी ज्यादा जरूरत है, ईरान को भारत की या भारत को ईरान की, इसे कैसे समझें?
जी जी, बल्कि जब मनमोहन सिंह के वक्त पे एक प्रेशर पे इंडिया आई थी और हम लोग की रिलेशनशिप ईरान से बहुत ही नाजुक हो गई थी, बल्कि ख़राब हो गई थी, तो उस वक्त ईरान को बहुत ज़रूरत थी इंडिया की। पर अब जो समीकरण है मिडिल ईस्ट के और ख़ासकर इस तरफ के भी, अब ये जो डिपेंडेंसी है ईरान की और इंडिया, ये बहुत कम हो चुकी है। जो फॉरेन पॉलिसी है तो उसमें ईरान का क्या रोल है और क्या पोजिशन है, ये क्लियर नहीं है।
आपने जिक्र किया भारत की विदेश नीति का, आपको लगता है कि ईरान के प्रति भारत की कोई ठोस विदेश नीति रही है कि ये हमारा एक परमानेंट स्टैंड है ईरान के प्रति?
जी बिल्कुल, बल्कि शुरू में जरा सब काफी परमानेंट था और एक रिलेशनशिप अच्छी बन गई थी ओवर द 70s-80s में, अगर आप देखिए जब इस्लामिक स्टेट गैदर करते थे और एक रेजोल्यूशन पास करते थे कश्मीर पे, ईरान का पोजिशन हमेशा प्रो इंडिया रही है। फिर ये पूरी डाइल्यूट हो गई जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट वॉशिंगटन के करीब हो गई। अभी अगर आप कहिए कि क्या पोजिशन है इंडिया की ईरान पे, तो ना ईरान कह सकता है ना इंडिया कह सकती है।
कोई एक मुद्दा, कोई एक चीज जिस पर दोनों में सहमति कभी बन नहीं पाई, या जो एक चीज दोनों के बीच तनाव की वजह हो सकती है, वो एक मुद्दा क्या होगा?
अभी की अगर बात करेंगे तो पैलेस्टाइन कहूंगी मैं। इसराइल डोमिनेशन जो है मिडिल ईस्ट का, और जो इसराइल के खिलाफ एक ऑपोजिशन है, वहाँ पर आई थिंक काफी तनाव है दोनों का कि किस तरीके के इसराइल का रोल दोनों ने देखा है वर्ल्ड में। इंडिया के लिए इसराइल काफी अहम है और ईरान के लिए पैलेस्टीनियन इशू ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैलेस्टीनियन इशू से कनेक्टेड है उसकी जो जियोपॉलिटिक्स है उस रीजन की। तो इन दोनों के लिए एक अगर आप डिवाइडिंग लाइन है तो वो है पैलेस्टाइन और ऑल द पॉलिटिक्स जो पैलेस्टाइन से निकलती है।
ये थी सीमा मुस्तफा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होंगे। त्रिपुरा में 18 फरवरी को नई विधानसभा गठन के लिए मतदान होना है। पिछले चुनाव में हाशिए पर रही बीजेपी इस बार त्रिपुरा में बहुमत हासिल करने का दावा कर रही है। अगरतला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रवि। सलमान साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए, नमस्कार, कैसा उत्साह है, कितना उत्साह मोदी की रैली को देखते हुए आज आप देख पा रहे हैं वहाँ?
देखिए ये तो बीजेपी के लिए बहुत ही अहम रैली है, क्योंकि 2014 में ये वही जगह है कि जब एक वेव चल रही थी पूरे भारत में और हर जगह मोदी 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 के नारे लगाए जा रहे थे, उस वक्त ये जो अगरतला का ये जो मैदान है, त्रिपुरा का अस्तबल मैदान इसे कहते हैं क्योंकि राजा का अस्तबल ये हुआ करता था, तो ये अस्तबल मैदान इसमें मतलब जब 300 रैलियां मोदी संबोधित करते हुए जब पहुंचे थे तो सबसे कम प्रेजेंस अगर लोगों का था या उनकी पूरी रैलियों में तो वो यही था। और इससे काफी निराश भी थी बीजेपी के इतने कम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि पार्टी का बेस था नहीं। तो अब जो है ये रैली इसलिए अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 4 सालों में यहाँ पे जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी और संघ ने,
उसी के आधार पर ये दावा कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए एक सरकार को हटाना पड़ेगा, मानिक सरकार, क्या कोई लहर देखते हैं वहाँ आप किसी की भी, बीजेपी या मानिक सरकार?
ये तो कैडर वर्सेस कैडर की लड़ाई है, जो पहली बार जो है बीजेपी को जिसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस तो नेताओं की पार्टी है, अगर कैडर बचा हुआ है तो या तो संघ के पास है या फिर कम्युनिस्ट पार्टीज जो है उनके पास है, और वो जो बूथ लेवल पर जो मैनेज करते हैं, और यही इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी जो है जहां भी जीत दर्ज कर रही है तो वो बूथ मैनेजमेंट पर ज्यादा अमित शाह हमेशा जोर देते हैं, तो यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट करने पर उनको वो टक्कर का सामना करना पड़ा है जो कैडर है कम्युनिस्ट पार्टी के, क्योंकि लोगों के पास भी उसी तरह के कैडर हैं जिस तरह के बीजेपी और आरएसएस के पास हैं। इसलिए ये जो है ये बड़ा टफ खेल है। खुद राम माधव ने भी इस बात को स्वीकार किया।
जी आपने राम माधव का जिक्र किया, शुक्रिया सलमान साहब। अब हम श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे कि जो पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की कमान देख रहे हैं, उनके मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं राम माधव, वो बीजेपी की जीत के दावे की क्या वजह बताते हैं। सलमान रावी साहब से जब उन्होंने बात की तो इन सवालों का जवाब दिया।
बात तो सच है कि असम छोड़कर बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस लगभग ना के बराबर थी। 2-3 कारणों से हमारा काम अच्छा आगे बढ़ा है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सरकार डे वन से जो काम किया, दूसरी फैक्टर एक यहाँ ये रही है कि यहाँ कई राज्यों में कांग्रेस या अन्य स्थानीय दलों के, यहाँ पर जैसे त्रिपुरा में सीपीएम के सरकारें लंबे अरसे तक चलते रहे, तो पहली बार बीजेपी एक चैलेंजर के रूप में सामने आई। एक फैक्टर मैं जरूर जोड़ता हूँ, हमने एक बहुत टैक्टफुली यहाँ पॉलिटिकल मूव्स कुछ किए थे, उसका भी एक अच्छा परिणाम हमको मिला।
वो मूव्स तोड़ने वाले मूव्स तो नहीं थे कि आपने दूसरी पार्टी को तोड़ दिया?
देखिए, पॉलिटिक्स में तोड़ना वोड़ना नहीं होता है, उसका भी हमने
पूरे के पूरे दल आप में समा गए जाते
हैं। ऐसा भी हुआ है एक आध राज्यों में, जैसा अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास 11 विधायक पहले से थे, और जो हमारा मित्र दल था वो एक समय में तय किया कि नहीं हम पूरा बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे, ऐसी स्थिति वहां पर अरुणाचल में जरूर आई।
बात होती है बीजेपी की और आरएसएस की, तो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं, लोग आपको घेरने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन काफी बड़ी तादाद में है, वहां बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर कैसे जाएगी?
बीजेपी का जो विचारधारा है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है। नॉर्थ ईस्ट में इसी प्रिंसिपल्स के आधार पर हमारा पार्टी ने जो काम किया है उसमें काफी बड़ी संख्या में सभी समुदायों के लोग पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। उदाहरण के लिए नागालैंड, जहां 97% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, वहां बीजेपी सरकार में शामिल है।
लेकिन ये नागालैंड का जो मामला रहा, आजादी से पहले से चलता आ रहा है, जब ब्रिटिश ने हमला किया और उसके बाद से फिर सेशन जब हुआ तो उसको फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद से एक बोन ऑफ कंटेंशन बना ही हुआ है नागालैंड का। आप लोगों ने पहल की थी बीच में 2015 में, तो आज वो एक्चुअली वो जो रिपोर्ट है वो उसका पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है नागालैंड का।
नागा समस्या का एक स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास अटल जी की सरकार ने शुरू किया था। मोदी जी पीएम बनने के बाद तुरंत यह संकल्प लिया गया कि नागा समस्या का एक स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। उसके लिए 2015 में कुछ नागा अंडरग्राउंड ग्रुप्स और भारत सरकार के बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुई। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि बहुत जल्दी नागा समस्या के स्थायी समाधान हमारी सरकार नागा गुट के साथ मिलकर खोजने वाली है।
ऐसा क्यों है राम माधव जी के बीफ पर कोई बात नहीं होती जब इलेक्शन आता है यहाँ का? तो क्या ये मतलब सिर्फ पोलराइज करने के लिए ही इस तरह के जो है स्टेटमेंट्स लीडर्स के आते हैं विद इन पार्टी?
हमारा मत इसमें स्पष्ट है, कौस लाटर को लेकर कानून है अनेक राज्यों में, जिन राज्यों में कानून है उनका पालन होना चाहिए, पर कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसी के फूड हैबिट्स में हम हस्तक्षेप करेंगे।
केरला के बाद त्रिपुरा ही एक ऐसी जगह है जहां पर आपको टफ फाइट का सामना करना पड़ा है?
नहीं, ये बहुत बड़ी टक्कर है, इनफैक्ट मैंने इसको बैटल रॉयल कहता हूं, क्योंकि त्रिपुरा में 25 साल से ग्रास रूट तक पेनिट्रेट हुआ पार्टी सीपीएम है। इनको अपदस्थ करना ये कोई कन्वेंशनल इलेक्शनरिंग से नहीं होता है, इनको इलेक्टोरल मैनिपुलेशंस भी मालूम है, उसको भी रोकना है।
मानिक सरकार के बराबर की छवि का कोई सीएम का चेहरा त्रिपुरा में तो कम से कम लेकर नहीं आ पाए आप, पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर साहब का मुकाबला है साहब, अमीर सबसे अमीर पार्टी का।
इस राज्य में मानिक सरकार की सरकार के चलते 68% लोग साइकिल तक खरीद नहीं सकते हैं। एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने एक हिंसाचारी सरकार, अत्याचारी सरकार और भ्रष्टाचारी सरकार चलाया है।
ये जो स्टिंग ऑपरेशंस हैं और ये जो सीडीज हैं, इस तरह के कांड अब भारतीय राजनीति से खत्म हो चुके हैं, लेकिन गुजरात में हार्दिक पटेल का सीडी अचानक सामने आया, उसके बाद आपके ऊपर आरोप लगा दिया लोगों ने।
इस पर हम साइबर सेल में इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा, एकदम झूठा है, गलत है, पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उस पर कार्रवाई होगी।
और ये बताइए कितनी सीटें आपको उम्मीद है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं नागालैंड में और
हमें हमारा पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा में हमारा अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में हम रहेंगे। मेघालय कांग्रेस से तर सरकार बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। तीसरी बात नागालैंड का, हमें विश्वास है कि हमारा जो गठबंधन है एनडीपीपी बीजेपी का, वो सिंपल मेजॉरिटी लेकर सरकार बनाएगी।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम माधव। राम माधव भारतीय जनता पार्टी की प्रगति की बात कर रहे हैं, तो वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का दावा है कि पार्टी ने 2014 में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। जरा उन्हें भी सुनिए।
मैं जरूर इस बात को स्वीकार करूंगा कि मैंने नरेंद्र मोदी को बैक किया था एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, और मैंने ये भी कहा था कि उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ें तो हम जबरदस्त सफलता उसमें हासिल करेंगे, और मेरा आकलन सही था। और मैनिफेस्टो में हमने बहुत सारे वादे किए, और मैं अब जब मुड़कर देखता हूँ कि शायद 3-4 सालों में हमने उन वादों को पूरा नहीं किया, तो मुझे तकलीफ होती है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से।
यशवंत सिन्हा से लंबी बात की है हमारे साथी विनीत खरे ने, और आप ये पूरी बातचीत रविवार को दिन भर में सुन सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। बताने के लिए मौजूद हैं सर्वप्रिया सांगवान। जी सर्वप्रिया,
ये दो ऐसी खबरें हैं जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी के लगभग सभी अखबारों ने मुख्य तौर पर अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। उनमें से पहली है कि करीब 9 साल से फरार इंडियन मुजाहिदीन के एक संदिग्ध को आरिज खान उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और पुलिस का दावा है कि दिल्ली, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और जयपुर में 165 से ज़्यादा लोगों की हत्या से जुड़े धमाकों में उसका हाथ है। और ANI और दिल्ली पुलिस के जो इनाम उसके ऊपर रखे गए थे उन्हें मिलाकर तकरीबन 20 लाख का इनाम उसके ऊपर था, और 9 साल से ये फरार था, और आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे पकड़ ही लिया। और इसे
सुरक्षा एजेंसी ऐसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है।
बिल्कुल। और 25 साल जब से एक हमला हुआ था उस तब से ही ये फरार चल रहा था, बाटला हाउस एंड हमले के बाद से
एनकाउंटर जो हुआ था,
जी उसके बाद से ही ये फरार था, और अभी इसे 25 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और जो दूसरी बड़ी खबर है जो सभी अखबारों में है वो है PNB, जिसे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक माना जाता है,
सार्वजनिक
बैंक माना जाता है, वहाँ पर तकरीबन 11,356 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। और ये इस फ्रॉड में एक ज्वेलरी मेकर नीरव मोदी का हाथ बताया जा रहा है कि उन्होंने एक
उनके ऊपर आरोप लगे हैं, मुंबई का ये मामला
जी
है।
जी, और बैंक ने इस सिलसिले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई और बिजनेस पार्टनर के खिलाफ CBI में 2 शिकायतें दर्ज कराई हैं। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है, तकरीबन 11,356 करोड़ का। और इसके अलावा एक और जो खबर है वो है पंजाब किसी अखबार ने छापी है कि अगर आज चुनाव होते हैं दिल्ली में तो फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार
आम आदमी पार्टी ने जो उनकी सरकार है दिल्ली में उसने 3 साल कल पूरे
किए। कल ही उन्होंने 3 साल पूरे किए हैं, और उसी के मौके पर ABP ने एक सर्वे कराया था जिसमें ये बात सामने आई है कि अगर आज दिल्ली में चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, यानी जनता फिलहाल उनसे काफी खुश नजर आ रही है।
हालांकि ये भी दावा किया गया है कि अगर आज की स्थिति में चुनाव होते हैं तो उनकी सीटें पहले से कम हो जाएंगी, लेकिन बहुमत उनके पास रहेगा।
जी, और दरअसल ये तो हर किसी भी चुनाव में होता ही है कि आप कुछ थोड़ा सा नीचे जाते ही हैं।
जी, ये एक सर्वे की बात है। जी, और इसी से जुड़ी हुई जो दूसरी खबरें हैं वो इसमें एक खबर पंजाब केसरी ने ही छापा है, जिसमें जिस तरह से जो शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, एक जवान शहीद अखबार ने लिखा है, जो मारे गए थे उसमें एक जवान की मौत हुई थी, उस मौत को लेकर सेना ने अपना स्पष्टीकरण दिया है।
दरअसल इसे जोड़ा जा रहा है कि ओबीसी ने एक बयान दिया था कि सुजमा में जो शहीद हुए हैं उसमें से 7 में से 5 मुस्लिम हैं, और उसी को लेकर कहा जा रहा है कि सेना ने एक जवाब दिया है उन्हें।
बहुत शुक्रिया सर्वप्रिया जानकारी के लिए। और अब जान लेते हैं खेल की दुनिया की क्या है हलचल।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की सीरीज में भारत ने 4-1 से जीत दर्ज की। अब इस श्रृंखला का आखिरी और छठा मुकाबला होगा कल सेंचुरियन में, उसके बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच होंगे। पहला मुकाबला खेला जाएगा 18 फरवरी को। दक्षिण अफ्रीका में जीत दर्ज करने के साथ साथ टीम इंडिया टेस्ट और वनडे दोनों में ही रैंकिंग में नंबर 1 है। अब बात फुटबॉल की। प्रीमियर लीग के मुकाबले ने चेल्सी ने हराया वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन को 3 गोल से। चेल्सी के मैनेजर एंटोनियो कोंते ने कहा कि उनके लिए ये जीत बहुत अहम रही।
दो हार के बाद हमारा कॉन्फिडेंस टूट गया था, तो इसीलिए ये जीत हमारे लिए बहुत अहम थी। हमने इस मैच में 3 गोल दागे और अब आगे होने वाले मुकाबलों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।
अब बात करते हैं विंटर ओलंपिक्स की जो चल रहे हैं इस वक्त साउथ कोरिया में। पदक तालिका की अगर बात की जाए तो सबसे आगे है जर्मनी, फिर नेदरलैंड्स और फिर अमेरिका। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया से।
BBC समाचार। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार शाम टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में इस्तीफे का ऐलान किया। इससे पहले जुमा की पार्टी ANC ने उन्हें पद छोड़ने या फिर गुरुवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को कहा था। साल 2009 से सत्ता में रहे जुमा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। अमरीकी प्रांत फ्लोरिडा के पार्कलैंड में एक हाई स्कूल में गोलीबारी हुई जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूल की इमारत को घेर लिया। अमरीकी मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका जाहिर की गई है। एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने। फेसबुक प्रसारण में मदद की गुरप्रीत कौर ने। शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आपके साथ है BBCHindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।